नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप रचना सहाय से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष पर गहरी चिंता व्यक्त की। लोकसभा में आज अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने शांति, संवाद और कूटनीति पर दिया जोर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समृद्धि यात्रा पांचवे चरण के तहत आज जहानाबाद और अरवल में कई विकास योजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। बिहार बोर्ड ने इंटरमीडिएट की परीक्षा का परिणाम जारी किया। 85.19% परीक्षार्थी हुए सफल। और लोक आस्था के चार दिवसीय महापर्व छठ के दूसरे दिन आज व्रती खरना का अनुष्ठान कर रहे हैं। कल अस्ताचलगामी सूर्य को पहला अर्घ्य अर्पित किया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष पर लगातार गहरी चिंता व्यक्त की है। आज लोकसभा में उन्होंने अपने संबोधन के दौरान कहा कि इस युद्ध के कारण दुनिया में हालात चिंताजनक बने हुए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने सभी पक्षों से तनाव कम करने का आग्रह किया है और इस बात पर जोर दिया है कि संघर्ष का एकमात्र समाधान शांति, संवाद और कूटनीति है।
जहाँ तक डिप्लोमेसी की बात है, भारत की भूमिका स्पष्ट है। शुरुआत से ही हमने इस संघर्ष को लेकर अपनी गहरी चिंता व्यक्त की है। मैंने स्वयं भी पश्चिम एशिया के सभी संबंधित नेताओं से बातचीत की है। मैंने सभी से तनाव को कम करने और इस संघर्ष को खत्म करने का आग्रह किया है। भारत ने नागरिकों, एनर्जी और ट्रांसपोर्ट से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों का विरोध किया है। कमर्शियल जहाजों पर हमला और हॉर्मुज स्ट्रेट जैसे अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग में रुकावट अस्वीकार्य है। भारत डिप्लोमेसी के जरिए युद्ध के इस माहौल में भी भारतीय जहाजों के सुरक्षित आवागमन के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है।
इस बीच प्रधानमंत्री ने देश में कालाबाजारी पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि सभी राज्य सरकारें संवेदनशील, सतर्क और हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए पूरी तरह से तैयार रहें।
इस युद्ध के कारण दुनिया में जो कठिन हालात बने हैं, उनका प्रभाव लंबे समय तक बने रहने की आशंका है। इसलिए हमें तैयार रहना होगा, हमें एकजुट रहना होगा। मैं देश की सभी राज्य सरकारों से भी इस सदन के माध्यम से आग्रह करूंगा, ऐसे समय में कालाबाजारी करने वाले, जमाखोरी करने वाले एक्टिव हो जाते हैं, इसके लिए कड़ी मॉनिटरिंग जरूरी है। जहां से भी ऐसी शिकायतें आती हैं, वहां त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। देश की हर सरकार और देश का हर नागरिक जब मिलकर चलेंगे तो हम हर चुनौती को चुनौती दे सकते हैं।
प्रधानमंत्री ने देश को ये सुनिश्चित किया है कि देश का खाद्य भंडार पर्याप्त मात्रा में है। इस मौसम में उचित बुआई सुनिश्चित करने का प्रयास भी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हाल के वर्षों में सरकार ने उर्वरकों की पर्याप्त व्यवस्था की है ताकि वैश्विक संकटों का बोझ किसानों पर न पड़े।
देश के किसानों ने हमारे अन्न के भंडार भर रखे हैं, इसलिए भारत के पास पर्याप्त खाद्यान्न है। हमारा ये भी प्रयास है कि खरीफ सीजन की ठीक से बुआई हो सके। सरकार ने बीते सालों में आपात स्थिति से निपटने के लिए खाद की पर्याप्त व्यवस्था भी की है। देश के किसानों को विश्वास दिलाता हूँ कि सरकार किसानों की हर संभव मदद करती रहेगी।
श्री मोदी ने कहा कि युद्ध का वैश्विक प्रभाव कुछ समय तक बना रह सकता है, इसके लिए उन्होंने देश को तैयार रहने को कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राज्यसभा में भी पश्चिमी एशिया विवाद और भारत की रणनीतिक पहलुओं पर अपने विचार रखेंगे। केंद्र सरकार ने कहा कि 50% वाणिज्यिक एलपीजी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उपलब्ध है। आज नई दिल्ली में पेट्रोलियम और गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में कहा कि राज्यों और स्थानीय निकायों द्वारा संचालित रेस्तरां, ढाबा, होटल, औद्योगिक कैंटीन, डेयरी आदि अन्य क्षेत्रों में आवंटन को प्राथमिकता दी जाएगी। लोकसभा में कॉरपोरेट कानून संशोधन विधेयक 2026 पेश करने के बाद आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विस्तृत विश्लेषण के लिए इसे संयुक्त संसदीय समिति को भेजने का प्रस्ताव रखा। इस विधेयक का उद्देश्य सीमित देयता भागीदारी अधिनियम 2008 और कंपनी अधिनियम 2013 में संशोधन करना है।
The recommendations of the company law committee.
कंपनी विधि समिति की सिफारिशों और 2022 की रिपोर्टों को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया गया है. इसके बाद समिति में उद्योग संगठन, पेशेवर संस्थानों, कानूनी और लेखा विशेषज्ञों के प्रतिनिधि शामिल हुए. रिपोर्टों को सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए वेबसाइट पर भी रखा गया था, जिन पर टिप्पणियां प्राप्त हुई और फिर उनकी जाँच की गयी. राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरणों की शक्तियों के मुद्दे पर प्रस्तावित प्रावधान SEBI, प्रतिस्पर्धा आयोग और IBBI जैसे अन्य नियामकों को दी गई शक्तियों के समान है.
कॉम्पिटिशन कमीशन एंड IBBI.
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समृद्धि यात्रा के पांचवें चरण में आज जहानाबाद और अरवल में अपनी यात्रा की शुरुआत की. अरवल में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 63 करोड़ रुपए की लागत वाली 22 योजनाओं का शिलान्यास और 90 करोड़ रुपए की लागत वाली 250 योजनाओं का उद्घाटन भी किया.
अब बिहार के विकास में केंद्र सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा. जुलाई 2024 के बजट में बिहार को विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा की गई. फिर फरवरी 2025 के बजट में बिहार में मखाना बोर्ड, एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता आदि की घोषणा की गई. तो अनेक तरह से केंद्र सरकार के द्वारा भी बहुत काम किया जा रहा है. अब बहुत आगे बिहार बढ़ने वाला है.
जहानाबाद में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 70 करोड़ रुपए लागत वाली 88 योजनाओं का उद्घाटन किया. साथ ही उन्होंने 182 करोड़ रुपए की लागत वाली 73 योजनाओं का शिलान्यास भी किया. इस अवसर पर आयोजित जनसंवाद में मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 2 दशक में स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और आधारभूत संरचना निर्माण जैसे क्षेत्रों में राज्य ने उल्लेखनीय प्रगति की है. श्री कुमार ने कहा कि आज बिहार देश के विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल होने के लिए अग्रसर है. बिहार विधानसभा के अध्यक्ष डॉ प्रेम कुमार ने आज नागपुर में आयोजित इंडियन यूथ पार्लियामेंट के 29वें राष्ट्रीय सत्र को संबोधित किया. इस अवसर पर उन्होंने कहा कि विकसित भारत का निर्माण युवाओं की ऊर्जा, नेतृत्व क्षमता और लोकतांत्रिक मूल्यों की समझ पर निर्भर करता है. प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं. ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_Patna पर जा सकते हैं. बिहार बोर्ड ने इंटरमीडिएट की वार्षिक परीक्षा का परिणाम आज जारी कर दिया है. कुल 85.19% परीक्षार्थी सफल हुए हैं. विज्ञान संकाय में आदित्य प्रकाश अमन, कला संकाय में निशु कुमारी और वाणिज्य संकाय में अदिति कुमारी ने पूरे बिहार में प्रथम स्थान प्राप्त किया है. परीक्षार्थी अपना रिजल्ट interbiharboard.com और bsebexam.com पर देख सकते हैं. शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने आज पटना स्थित बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के सभागार में परीक्षा फल जारी किया. शिक्षा मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की योजनाओं से शिक्षा के क्षेत्र में लड़कियां काफी बेहतर कर रही हैं.
85.19% छात्र छात्राओं ने इस एग्जाम को पास किया है और जो माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने महिला सशक्तिकरण का काम 2005 से शुरू किया वो इस रिजल्ट में भी परिलक्षित होता है. जो हमारी छात्राएं हैं बिहार की, वो जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हैं, उनका परसेंटेज 86.23 है.
इस परीक्षा में 84.9% छात्र और 86.23% छात्राएं सफल रही हैं. बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि तीनों संकायों में 26 टॉपर में 19 लड़कियां हैं. इधर इंटरमीडिएट के कॉमर्स से पटना की छात्रा अदिति कुमारी ने बिहार में टॉप किया है. उन्होंने 480 अंक के साथ पहला स्थान हासिल किया. अदिति ने अपनी सफलता के बारे में आकाशवाणी से बातचीत की.
20 मैंने स्ट्रॉन्ग किया, मेरे भैया ने मुझे बुक्स वगैरह दी थी, मुझे गाइड किया. अकाउंटेंसी हो गया, बिजनेस स्टडीज हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, इन तीनों सब्जेक्ट्स को मैंने अपना फेवरेट सब्जेक्ट बना लिया और बाकी जो और सब्जेक्ट रहे सबको मैंने इक्वल इम्पोर्टेंस दिया है. मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहती हूँ और अपना फर्म सेटअप करना चाहती हूँ.
इधर गया जिले के किंजर सराय ब्लॉक के लोदीपुर की निशु कुमारी ने कला में प्रथम स्थान प्राप्त किया है. उन्होंने 479 अंक प्राप्त किया. आकाशवाणी से बातचीत में उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता को दिया है.
हमको आर्ट्स में शुरुआत से ही इंटरेस्ट था और हमको इतना पता था कि हम किसी भी स्ट्रीम को चूज करेंगे तो उसमें मेहनत 100% करेंगे. हमको रुचि है सबसे ज्यादा पोल साइंस में. बाहर तो अभी जाने के लिए सोचे हैं बट जो लक्ष्य है उसको पूरा करेंगे.
वहीं विज्ञान संकाय में समस्तीपुर जिले के रहने वाले आदित्य प्रकाश अमन 96.20% के साथ पहला स्थान प्राप्त किया है। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता और शिक्षकों को दिया है।
बहुत खुश हूँ, राधा रानी को, अपने पेरेंट्स को, माता पिता को और सभी गुरुजन को। डॉक्टर बनना चाहते हैं। पढ़ाई में स्कूल का सपोर्ट रहा, एडिशनल सपोर्ट पेरेंट्स का रहा, और डाउट क्लियरेंस क्लैरिटी के लिए चैट जीपीटी जितने भी प्लेटफॉर्म्स है, रैंडम प्लेटफॉर्म्स को मैंने ट्राई किया।
और अब खबर चैती छठ की। आज लोग आस्था का महापर्व चैती छठ के दूसरे दिन व्रती खरना का अनुष्ठान कर रहे हैं। व्रतियों ने भगवान भास्कर को दूध और गुड़ से बनी खीर और रोटी का भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण किया। इसके साथ ही छठ व्रतियों का 36 घंटों का निर्जला व्रत शुरू हो गया है। कल अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया जाएगा। 25 मार्च को उदयमान सूर्य को अर्घ्य अर्पित करने के साथ इस महापर्व का समापन हो जाएगा। इधर हमारे संवाददाता ने बताया कि राजधानी पटना में गंगा नदी के 49 घाटों पर जिला प्रशासन ने छठ व्रतियों के लिए व्यवस्था की है। महापर्व छठ को लेकर कल राजधानी पटना में यातायात व्यवस्था में भी बदलाव किया गया है। हमारे औरंगाबाद संवाददाता ने बताया कि त्रेता युगिन सूर्य मंदिर को आकर्षक रूप से सजाया गया है। इस मंदिर में देश के विभिन्न प्रांतों और राज्य के विभिन्न हिस्सों में श्रद्धालुओं और व्रतधारियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। इधर सहरसा का कंदाहा सूर्य मंदिर, दुल्हिन बाजार का उल्लार सूर्य मंदिर, नवादा का हड़िया सूर्य मंदिर, नालंदा का बड़गांव और गारी धाम सूर्य मंदिरों को व्यापक रूप से सजाया गया है। इस दौरान चैती छठ में आने वाले श्रद्धालुओं और छठ व्रतियों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। बिहार दिवस पर आयोजित 3 दिवसीय समारोह के आज दूसरे दिन राजधानी पटना में कई सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। गांधी मैदान में जाने माने पार्श्व गायक शान की प्रस्तुति होगी। वहीं एसके मेमोरियल हॉल में मोहिनीअट्टम युगल नृत्य और बुद्ध चरित्र पर आधारित नृत्य नाटिका की प्रस्तुति दी गई। इसके अलावा रविन्द्र भवन में दरभंगा घराने से मल्लिक बंधु ने ध्रुपद गायन पेश किया। रविन्द्र भवन में हास्य कवि सम्मेलन का भी आयोजन किया गया है। कवि सम्मेलन में सुरेंद्र शर्मा, शंभू शिखर, संजीव मुकेश, सान्या राय और पद्मिनी शर्मा शामिल होंगी। मौसम विभाग ने कहा कि पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के साथ ही एक बार फिर 26 मार्च से 28 मार्च के बीच प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश, ओलावृष्टि और तेज हवा चलने की संभावना है। मोकामा से जदयू विधायक अनंत सिंह 4 महीने बाद आज पटना के बेऊर जेल से रिहा हो गए हैं। पटना उच्च न्यायालय ने 20 मार्च को दुलारचंद यादव हत्या मामले में उन्हें जमानत दी थी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष पर गहरी चिंता व्यक्त की। लोकसभा में आज अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने शांति, संवाद और कूटनीति पर दिया जोर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समृद्धि यात्रा के 5वें चरण के तहत आज जहानाबाद और अरवल में कई विकास योजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। बिहार इंटरमीडिएट की परीक्षा का परिणाम जारी, 85.19% परीक्षार्थी हुए सफल। और लोक आस्था के 4 दिवसीय महापर्व छठ के दूसरे दिन आज व्रती खरना का अनुष्ठान कर रहे हैं। कल अस्ताचलगामी सूर्य का पहला अर्घ्य अर्पित किया जाएगा। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।